अध्याय 3 श्लोक संख्या 27 3.27
प्रकृते क्रियमाणानि
गुणहे
कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते।
जीवात्मा अहंकार मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं।
जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहित होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, मूर्खता है नहीं कि नहीं? जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं, अर्थात अहंकार के कारण जीव विशेष प्रकार से मूर्ख बना हुआ है ना। जीव विशेष मूर्ख है। क्यों विशेष मूर्ख है? क्योंकि अहंकार है। ये भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि अहंकार के कारण व्यक्ति विशेष प्रकार का मूर्ख हो जाता है, है ना? मूर्खों में विशेष मूर्ख 25 और 26 में भगवान ने क्या कहा था? 3.25 एंड 3.26 उसमें भगवान ने कहा था, उन्हें भौतिकवादियों के विषय में दो बातें बताई थी। हाँ, क्या बताया था? एक तो कहा था कि वो अज्ञानी रहते हैं। भौतिकवादी अज्ञानी होते हैं या अविद्वान होते हैं? अविद्वान शब्द आया है उसमें, अविद्वान, विद्वान नहीं होते। अज्ञानी कौन? जो भौतिकवादी है। और फिर दूसरे आगे के श्लोक में, अर्थात इसलिए इसके पहले के श्लोक में क्या कहा गया था कि वे कर्मों में आसक्त होते हैं। दो बातें हैं भौतिकवादियों की। पहली बात क्या है? एक तो वो अज्ञानी होते हैं। दूसरी बात क्या है? या तो वो कर्मों में आसक्त होते हैं। और इस श्लोक में इन्हीं दो बातों के विषय में भगवान और विस्तृत बता रहे हैं कि कैसे होता है ये सब, किस प्रकार से ये हो सकता है। भगवान कहते हैं अज्ञानी इसलिए क्योंकि अहंकार से बंधे हुए हैं। अहंकार ही मूढ़ात्मा। क्यों अज्ञानी है? क्योंकि अहंकार से बंधे हुए। अहंकार का अर्थ क्या है? वो क्या मानते हैं? आई एम अ बॉडी, आई एम नॉट अ सोल। मैं शरीर हूं, मैं आत्मा नहीं हूं। ये सबसे बड़ा अहंकार है, सबसे बड़ा अज्ञान है। और इस अज्ञानता के कारण अहंकार आ जाता है। सबसे बड़ा अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं। और ये सबसे बड़े अज्ञान के कारण सबसे बड़ा अहंकार हो जाता है। और यही सबसे बड़ी मूर्खता है। तो इस श्लोक में इसलिए भगवान जो अज्ञानी कहते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अपने शरीर में ज्यादा आसक्त होते हैं। जो व्यक्ति मिथ्या अहंकारी है वो अहंकार से इसलिए बंधा जाता है क्योंकि वो अज्ञानी है। और अज्ञान का अर्थ होता है मैं शरीर हूं, मैं आत्मा हूं। सबसे बड़ा अज्ञान। फिर दूसरी बात भगवान ने कही थी, वे कर्मों में आसक्त होते हैं। कैसे आसक्त होते हैं? आसक्त क्यों कहा है? कर्मों में आसक्त। भगवान ने दो बातें कही थी ना, एक तो विद्वान है, अज्ञानी है, और दूसरी बात यह है कि कर्मों में आसक्त है। कर्मों में आसक्त क्यों कहा गया था? हाँ, वो अपने आप को कर्ता मानते हैं। वो अपने आप को कर्ता मानते हैं। वो सोचते हैं मैं ही तो कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो संसार कैसा चलेगा? सब तो मेरे भरोसे चल रहे हैं, यदि मैं नहीं हूं तो सब कैसा हो जाएगा? हाँ, अपने आप को कर्ता मानते हैं। ये दो बातें भगवान ने पिछले समय, ये हो गया है, दिस इज नॉट अ न्यू टॉपिक, ये पुराना टॉपिक है। तो ये हो गया है। भगवान कहे थे कि कर्ता मानते हैं वही अज्ञान है। अपने आप को कर्ता मानना भी बहुत बड़ा अज्ञान है, इसके कारण वो कर्मों में आसक्त रहता है। व्यक्ति कर्मों में आसक्त क्यों रह सकता है? यदि वो सोचेगा ये मैं कर रहा हूँ तभी तो आसक्त होगा। यदि मैं सोच रहा हूँ वो आप कर रहे हैं तो मैं क्यों आसक्त होगा? या कोई और कर रहा है तो मैं क्यों आसक्त होगा? या भगवान ही करेगा, जो कुछ करना है भगवान को करना है, जो कुछ करना है डेस्टिनी करेगी, जो कुछ करना है जो भी कुछ आएगा दैव से आएगा, इस प्रकार से जो सोचता है वो कर्मों में बहुत ज्यादा आसक्त नहीं होता है। परंतु जो सोचता है कि कर्म तो मैं ही करने वाला हूँ और मैं नहीं करूँगा तो भयंकर दशा हो जाएगी संसार की, तो वो व्यक्ति कर्मों में आसक्त हो जाता है। उसके अंदर कर्ता का भाव रहता है, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ। तो यह बातें भगवान ने पिछले समय बताई थी। जबकि कर्ता कौन है, व्यक्ति कर्म करता क्यों है, इसका उत्तर, इसका विस्तृत उत्तर भगवान ने इस श्लोक में दिया है। तो कर्ता इसलिए है, कर्ता कौन है कि प्रकृति के गुणों के प्रभाव में व्यक्ति आ जाता है। प्रकृति के गुणों के प्रभाव में आने के कारण कर्म होते हैं। मैं सोचता हूं कर्म मैं कर रहा हूं परंतु मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, कौन कर्म कर रहा है मेरे अंदर का? मेरा अर्थात जीवात्मा कर्म कर रहा है, जीवात्मा तो कर्म ही नहीं करता। फिर कौन कर्म कर रहा है, कौन मेरे से कर्म करवा ले रहा है? तो कर्म करने वाला कौन है? प्रकृति के तीन गुण, अर्थात हमसे कर्म करा के लेने वाला जो है या लेने वाले जो लोग है वो है ये तीन लोग। ये तीन लोग, ये जो गुण है, ये तीन गुण ये हमसे कर्म करवा लेते हैं। कर्म तो करवा लेने वाले ये तीन गुण, इसलिए कहा गया है प्रकृते क्रियमाणानी। क्या कहा है? प्रकृते क्रियमाणानी गुणे कर्माणी सर्वशः। प्रकृते क्रियमाणानी, प्रकृति अर्थात प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सभी कर्म हो रहे हैं। देखिए बहुत क्लोचार्ट ध्यान में रखें, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत तत्व का श्लोक है ये, इसको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। ये तीनों श्लोकों से कनेक्टेड है, 25, 26, 27। 25 में अज्ञानी को बताया गया है, 26 में आसक्त बताया गया है और 27 में मूर्ख बताया गया है। अज्ञानी, आसक्त और मूर्ख, और तीनों एक दूसरे से गहरा संबंध रखते हैं। अज्ञानता के कारण आसक्ति होती है और जितनी आसक्ति बढ़ती जाती है उतनी मूर्खता बढ़ती है। तो अज्ञानी, आसक्त और मूर्ख, मूढ़ अर्थात मूर्ख, एक मूर्ख अर्थात मूर्ख। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो यह तीन बातें ध्यान में रखनी योग्य है। अज्ञानता किसको कहते हैं? अज्ञानी कौन है? जो अपने आप को शरीर मानता है वो अज्ञानता है। आसक्ति किसको कहते हैं? जो कर्मों में आसक्त होता है। वो कर्मों में आसक्त क्यों होता है? उसके अंदर कर्ता का भाव होता है। और ये जो आसक्ति है कर्मों के प्रति, जो आसक्ति है, वास्तविकता क्या है? मैं तो कर्म करता नहीं, प्रकृति क्रियमाणा नहीं, प्रकृति के तीन गुणों से कहा गया इस श्लोक में, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। प्रकृति के गुणों के अनुसार व्यक्ति कर्म करता है, अर्थात प्रकृति के गुण कर्म करवाते हैं। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
तो भगवद गीता में अतिशय महत्व की बात जो ध्यान में रखने वाली है वो यह है कि प्रत्येक श्लोक का दूसरे श्लोक से जो संबंध है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण। सो प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः, प्रकृति के गुणों के द्वारा ही सभी कर्म हो रहे हैं। गुण कितने हैं, कौन से हैं, कौन से कौन से? सत्व, रज और तम। भगवद गीता में ट्रांसलेशन में तात्पर्य में प्रभुपाद जी इस श्लोक के नहीं, कोई दूसरे श्लोक के प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं, तीन गुणों का वर्णन करते हैं, तीन रस्ते हैं। क्या है ये तीन गुण अर्थात तीन रस्ते हैं, बड़े मोटे मोटे हैं। और इन तीन रस्तियों ने क्या किया है, मेरे जीवात्मा को अर्थात मेरे को, मेरा जीवात्मा अर्थात मैं, ये तीन रस्तों ने क्या किया, तीन रस्सियों ने मुझे मेरे शरीर के साथ इतना बुरी तरह से बांध दिया है, अर्थात जीवात्मा को शरीर के साथ एकदम तीन तीन मोटे मोटे रस्ते हैं, बहुत बुरी तरह से जकड़ लिया, बांध दिया है। सत्व रज तम, ये देह के साथ जीवात्मा को बांध देते हैं। महाभारत में इसका वर्णन है, महाभारत के शांति पर्व में ऋषि याज्ञवल्क है, यज्ञवल्क ये राजा जनक को उपदेश देते हैं। वो क्या कहते हैं, बोलते तीन गुणों के प्रकार, तीन गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, विभिन्न प्रकार की विचारधाराएं होती है गुणों के अनुसार, कोई कैसा कोई कैसा, सत्वगुणी कैसा, रजोगुणी कैसा, तमोगुणी कैसा, कैसा समझेंगे कौन सत्वगुणी है, कैसा समझेंगे कौन रजोगुणी है, कैसा समझेंगे कौन तमोगुणी है, क्या उसकी विशेष बातें हैं, सत्वगुणी किसको कहेंगे, किसको कहा जाएगा सत्वगुणी, देखिए सत्वगुण अपने आप को चेक करके। सत्वगुण के लक्षण होते हैं, वो व्यक्ति में धैर्य होता है, किसी व्यक्ति में धैर्य है, पेशेंस, धीरता है, अधीर नहीं है, इंपेशेंस नहीं है, धैर्य है। दूसरा क्या है, आनंदित रहता है, कभी भी देखो चेहरे पे आनंद है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम, आप जैसे तो नित्य आनंद जिसके चेहरे पे होता है, आनंद चेहरा, कितना भी संकट, कितना भी दुख, कितना भी फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन कुछ भी सेशन होने दीजिए, चेहरा देखते से दूसरे व्यक्ति को प्रसन्न लगना चाहिए, वो अपना दुख भूलना ही चाहिए। दूसरा व्यक्ति जब देखता है प्रभुपाद जी की ओर, केवल ऐसा प्रभुपाद जी देखते हैं, ऐसा कभी नहीं देखते, ऐसा कोई कितना भी गलित गात्र व्यक्ति हो, बहुत परेशान फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति हो, पूरा डिमोरलाइज व्यक्ति हो, कोई एकदम पूरी तरह से हतबल हुआ हुआ कोई व्यक्ति हो और प्रभुपाद जी को देख ले, क्या कॉन्फिडेंस है, क्या कॉन्फिडेंस है प्रभुपाद जी का, एट दिस एज 77 के एज में क्या कॉन्फिडेंस है, स्ट्रेट नेक एकदम ऐसा देखते हैं, स्टीक है लेकिन एकदम कॉन्फिडेंस से रखते हैं। सो इस प्रकार से किसी को भी देखकर, उनको देखकर हम अपना दुख सारे प्रकार की हतबलता है सब भूल जाए और हमको आनंद का अनुभव हो, तो उनका नित्य क्या होता है चेहरे पे, आनंद होता है। आनंद का चेहरे पे होता है ऐसा नहीं है, आनंद का वो नित्य अनुभव करते हैं, आर्टिफिशियल नहीं है, नहीं तो ऐसे तो बहुत लोग होते हैं, आप कोई कंपनी कोई ऑफिस में चले जाइए तो उधर रिसेप्शनिस्ट खड़े रहते हैं एकदम आनंदित दिखते, वो आनंदित होते हैं क्या, दे आर नॉट हैप्पी। आनंद अर्थात आनंद का वो अनुभव कर रहे हैं, दे आर रियलाइजिंग, आनंद का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, जो मन में है, जैसा मन है, जैसा हृदय है, वैसा चेहरा, वो सब भाव चेहरे पे आ जाता है। सो सात्विक लोगों का ये दूसरा लक्षण है, दे आर ऑलवेज हैप्पी, उनका चेहरा नित्य आनंदित रहता है, धैर्य आनंद। तीसरा क्या लक्षण है, प्रीति, दे आर हैप्पी टू लव ऑलवेज, वो किसी के भी साथ कभी भी जो व्यवहार करेंगे उनके पूरे व्यवहार में प्रेम ही प्रेम झलकता है, प्रीति झलकती है, प्रेम प्रीति लक्षणम, प्रीति के लक्षण में होते हैं उत्कर्ष, उत्कर्ष उनका उत्तरोत्तर, जैसा ही जैसे जैसे वो भक्ति में आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे उनका जीवन में आगे बढ़ते हैं, उनका उत्कर्ष ही होते जाता है, कोई डिमोशन नहीं है, प्रमोशन, एवरीडे प्रमोशन, एवरीडे प्रमोशन, रोज प्रमोशन होता है, रोज नया रियलाइजेशन, रोज हायर रियलाइजेशन, रोज हायर रियलाइजेशन, सोचिए रोज आज जो रियलाइज हुआ है उससे हायर लेवल ऑफ रियलाइजेशन दूसरे दिन, उससे उच्च स्तर का अनुभूति तीसरे दिन, उससे भी उच्च स्तर की अनुभूति चौथे दिन, हाँ है ना, विशेषता है ना, विशेष बात है ना, ऐसा अनुभव हो, साधारण बात नहीं ऐसा अनुभव। परंतु जो सत्वगुणी होते हैं उनको यह अनुभव नित्य होते हैं और एवरी डे डे बाय डे उनके वो अनुभव वो जो क्या है उत्कर्ष अर्थात भक्ति का जो अनुभव है, आध्यात्मिकता का जो अनुभव है, शुद्ध सत्व का जो अनुभव है, वो अनुभूति है रोज 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 बढ़ते जाती है बढ़ते जाती है उत्कर्ष। फिर ज्ञान तो होता ही है, ज्ञान का अर्थ क्या है, ज्ञान अर्थात कौन सा ज्ञान, ज्ञान अर्थात कौन सा ज्ञान, भगवद गीता के प्रत्येक प्रवचन में मैंने बताया वो तो है, वो सब चीज है, मुझे जो आंसर चाहिए वो ज्ञान अर्थात कौन सा ज्ञान, भगवद गीता इज अ संबंध ज्ञान, संबंध ज्ञान। जब मैंने कहा था भगवद गीता में जब भी ज्ञान ये शब्द हम उच्चारण करेंगे हमको क्या समझ में आना चाहिए, संबंध ज्ञान, संबंध तत्व है ये। तो उस व्यक्ति को ज्ञान होता है, कौन सा ज्ञान, संबंध ज्ञान, जिसको संबंध ज्ञान है उसका उसको सारे संसार का ज्ञान है। संबंध क्या है, संबंध का अर्थ क्या है, मैं कौन हूं, आत्मा का शरीर के साथ क्या संबंध है, मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है, है ना, कृष्ण कौन है, भगवान कौन है, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, मेरे शरीर का और आत्मा का क्या संबंध है, संबंध ज्ञान। तो इस व्यक्ति में यह भी होता है, ज्ञान परिपूर्ण होता है। आरोग्य संतोष और श्रद्धा, ज्ञान होने से उसका आरोग्य ठीक होता है क्योंकि प्रीति लक्षण है, सब मन स्थिर है तो आरोग्य ठीक रहेगा। फिर क्या होता है, संतोष रहता है। जिस व्यक्ति ने अनुभूति की है, जिस व्यक्ति ने अपने आत्मा का अनुभव लिया है, अपने आप वो संतुष्ट हो जाता है। संतोष, श्रद्धा, बहुत महत्व का विषय है ये श्रद्धा। श्रद्धा एक ऐसा गुण है, यदि वो व्यक्ति में नहीं है तो व्यक्ति असुर बन जाता है, और यदि वो व्यक्ति में है तो देव बन जाता है। कभी कभी असुरों में भी श्रद्धा होती है, लेकिन कौन सी श्रद्धा होती है उनकी, श्रद्धा का अर्थ क्या है, शरणागति। जब असुर लोग श्रद्धा से, उनके पास भी श्रद्धा होती है, वो तपस्या करते हैं श्रद्धा से, तो उनका भाव क्या होता है, शरणागति होती है क्या, तो वो श्रद्धा नहीं। यदि श्रद्धा में शरणागति नहीं है तो वो श्रद्धा नहीं, वो ढोंग है। अभी आज के समय में भी हम देखते हैं कई जगह पे बड़ी श्रद्धा से बहुत कुछ, कभी गणेश जी 11 दिन बहुत श्रद्धा से ढोलता से बजाएंगे जोर जोर से, है ना, क्या श्रद्धा है, श्रद्धा है कि नहीं है,
नहीं है।
क्यों नहीं है, श्रद्धा होती है, क्यों होती है श्रद्धा बताइए। तो श्रद्धा की व्याख्या क्या है, श्रद्धा की व्याख्या है शरणागति। श्रद्धा अर्थात आप शरण गए उनको, इसलिए आपको, आपके हृदय में श्रद्धा है इसलिए आप समर्पित है, शरणागत है। गणेश जी को शरणागत है क्या, और शरणागति है उनके पास, उल्टा है, क्या है, इंद्रिय तृप्ति है, इंद्रिय तृप्ति नहीं, इंद्रिय तृप्ति है। आप जाके देखिए क्या करते हैं, इंद्रिय तृप्ति। शरणागति और इंद्रिय तृप्ति दो भिन्न अपोजिट बातें हैं, इसलिए वो लोग क्या है हम जज नहीं कर सकते कौन क्या है, परंतु हमको जो दिखता है उसके अंदर ऊपर से हम अंदाज लगा सकते हैं कि शरणागति कहीं नहीं दिखती है। वो अच्छा भाव भी रखता होगा, हम क्या कमेंट्स करें, परंतु जो हमको दिखता है उसमें शरणागति नहीं दिखती है ना। शरणागति होना बहुत आवश्यक है। श्रद्धा, श्रद्धा अर्थात आप एकदम शुद्ध भाव से शरणागत है, उदारता, उदार रहते हैं, जो इस संसार में बहुत ही कठिन गुण है उदारता, है कि नहीं? बहुत कठिन है ना, बहुत कठिन है उदारता। क्षमा, हिंसा, समता, सत्य, जाने दो, छोड़ दो, ठीक है, छोड़ो, जाने दो। क्षमा इम्पॉसिबल, परंतु जो सत्वगुणी होते हैं वो छोटी छोटी बातों पे हैरान नहीं होते। कोई बहुत सी बातें उनको डिस्टर्ब करने वाली होती है परंतु वो उससे हैरान नहीं होते। उनको बहुत सी कठिनाइयां होती है, बहुत सी परीक्षाएं उनकी होती है, परंतु बोलते ठीक है जाओ, चलेगा, छोड़ो, चलो आगे बढ़ो, चलो आगे बढ़ो। छोटी बातों का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, असर नहीं पड़ता है, वो आगे का रास्ता देखते हैं, हमेशा नित्य ऊपर देखते हैं। तो इस प्रकार से क्षमा, अहिंसा, समता, सत्य, मृदुता, इसका अर्थ क्या है? मैं ये सारे गुण इसलिए बता रहा हूं, बड़े ढूंढ ढूंढ के लिखे मैंने कि इसमें से एक तो अपने में मिल जाए इसलिए इतने सारे ऑप्शंस है, एक तो मिल जाए अपने पास एकाध गुण मिल जाए, देखिए कई बार हम सब मिलके सब गुण आ जाए तो हो गया मृदुता, मृदुता का अर्थ क्या है? मृदु हृदय, जीव दया, करुणा, मृदु हृदय, अंतकरण एकदम सॉफ्ट, मृदु, मृदुता, लज्जा, लज्जा अर्थात किसी भी अधर्म या किसी भी प्रकार का विपरीत कार्य करने में संकोच, या संकोच से भी लज्जा उसको समझिए, तो यह उनमें होता है। शर्म आती है, शर्म, बहुत बार शब्द होते हैं, शर्म नहीं आती उनको, बहुत आती है जो सत्वगुणी होते हैं उनको बहुत शर्म आती है, किसी भी ऐसा उटपटांग कार्य करने में उनको शर्म आती है, लज्जा, लज्जा का भाव। स्थिरता, अभी ये एक मिनट में ये, तो दूसरे मिनट में वो, तो तीसरे मिनट में ये, हर मिनट में जंपिंग, हर मिनट में नया नया निर्णय, हर मिनट में नया नई नई बात, ऐसा नहीं, स्थिर रहते हैं। जो 5 साल पहले उनके विचार थे आज वही है, उनको पता है भगवान श्री कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूँ, 15 साल पहले मुझे पता हो गया था, और 15 साल पहले पता होने पर भी आज भी मैं वही मानता हूँ, उतनी तीव्रता है, उतनी तीव्रता से आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं तो होता क्या है, 5 साल पहले छोला माला शुरू की, भगवान कृष्ण भगवान ही समझ गए, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी बातों का प्रभाव पड़ गया, एक एक बात कम हो गई, अब मैं क्या मानता हूँ तो विचार बदल गए, विचार बदल गए। सो ये जो होते हैं सत्वगुणी, इनके विचार नहीं बदलते हैं, वो अपनी भक्ति में स्थिर रहते, अपनी श्रद्धा में स्थिर रहते, वो डामाडोल नहीं होते, स्थिर रहते हैं, स्थिरता रहती है। शौच, शौच अर्थात शुद्धता, पवित्रता। शुद्धता कौन सी है? सबसे बड़ी शुद्धता क्या है? मन की शुद्धता। क्या है मन की शुद्धता? सुहृदय सर्वभूता, बहुत कठिन है सादी सिंपल। मन की शुद्धता क्या है? मन शुद्ध कैसा समझा जाएगा? मन शुद्ध है कैसे समझा जाएगा? मन शुद्ध है कैसा समझेंगे? भगवान के प्रति प्रेम कैसा समझेंगे? जिसको हरि नाम में रुचि है, जिसको हरि नाम में प्रचंड रुचि है, समझना चाहिए उसका मन प्रचंड रुचि, ये नहीं कि अपना टाइम वैसा नहीं, नाम में जिसकी रुचि है उसके मन की पवित्रता है, यह टेस्ट है, समझ जाना चाहिए इस व्यक्ति का मन पवित्र है। और नाम में यदि रुचि नहीं है तो बाकी सब कुछ है, बाकी सब कुछ, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान धारणा, आसन प्राणायाम सब करते हैं, लेकिन फिर भी गारंटी नहीं है मन पवित्र होगा उसका। नाम में अर्थात, नाम में रुचि अर्थात भगवान में अटूट श्रद्धा, भगवान में अटूट श्रद्धा होगी तभी नाम में रुचि होगी, और जब नाम में रुचि होगी तभी भगवान के साथ संबंध गहरे हो जाएंगे, अर्थात अटूट संबंध हो जाएंगे, है कि नहीं। हरे
कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ये सत्व गुण के लक्षण है, सरलता, परोपकार, दया, ये सब लक्षण है सत्व गुण व्यक्ति के। इतने सारे हैं, इसमें से एक तो भी फाइंड आउट कीजिए, सब एक तो भी अपने में होना चाहिए। यदि एक आ गया तो फिर आसान हो जाएगा, धीरे धीरे दूसरे भी आ जाएंगे। एक यदि ये भी यदि आज की स्थिति में एक आपके पास है, आज की स्थिति में दूसरा जल्दी आ जाएगा। और यदि एक भी नहीं है, समझो यदि एक भी नहीं है तो क्या करना चाहिए, पहले तो यह भाव होना चाहिए कि मुझे एक चाहिए, कम से कम एक तो चाहिए मुझे, भगवान एक तो मेरे अंदर गुण आने का यह भाव। हाँ तो एक तो ले लो आप, दो चार जमा हो जाएगा, एक हाथ गया तो दूसरा आ जाएगा। मान लो दया भाव एक हाथ बार जागरूक नहीं हुआ, नहीं दया भाव जागरूक नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, तो अचानक से आपके अंदर सरलता जागरूक, सिंपलिसिटी। चलो ठीक है, ऐसा करते 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 ये 15-20 जो है उसमें के 3-4 स्थिर बन जाएंगे, 17-18 कट हो जाएंगे, 3-4 स्थिर बन जाएंगे। वो 3-4 जो गुण है वो आपका आपसे जब शुद्ध करवाएंगे, वो 3-4 गुण आपसे आपकी जीवा से शुद्ध जप करवाएंगे, अन्यथा इम्पॉसिबल है। जब भी मैकेनिकल हो जाएगा, एक मशीन की भांति बटन दबाया शुरू हो गया, ढक 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 ढक, 1-2 घंटा हो गया, खत्म, बंद करके रख दो। परंतु वो जो कुछ गुण रहेंगे 2-4-5-6-7 जो भी है, वो गुणों के कारण धीरे धीरे जप में रुचि आएगी, भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होगी। तो ये सात्विक गुणों के लोग होते हैं सत्वगुणी। अब रजोगुणी, इसमें का एक भी गुण नहीं होना चाहिए, यदि इसमें का एक भी है तो उसको भगाओ, इमीडिएट भगाओ। और पहले जो हमने कहा है उसमें का एक भी नहीं है तो इमीडिएट एक तो लो उसमें का, और इसमें का एक भी है तो उसको इमीडिएट भगाओ। क्या है रजोगुण? रूप और ऐश्वर्य में आसक्त, पहला गुण रजोगुणी व्यक्ति का रूप और ऐश्वर्य में प्रचंड आसक्ति, त्याग और करुणा का अभाव, बिल्कुल त्याग नहीं कर सकते, कभी नहीं हो सकता। एक 10 पैसे का काम आप उनसे मांगो वो नहीं कर सकते, त्याग नहीं है, करुणा कदापि नहीं हो सकती, दया भाव बिल्कुल नहीं है। त्याग और करुणा का अभाव रहता है, सुख का उपभोग करने की नित्य प्रवृत्ति रहती है, कभी दुख थोड़ा सा थोड़ा दूसरे के लिए दुख कदापि नहीं, नित्य सुख का उपभोग करने की लोलुपता रहती है। पर निंदा में बहुत मजा आता है, दूसरों की निंदा करने में बहुत ही प्रीति रहती है उनकी, बहुत अच्छा लगता है दूसरों की निंदा करने, और वाद विवाद करने में भी बड़े तत्पर रहते हैं हमेशा नित्य। और कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है तो उनका मान सम्मान करने के लिए कदापि आगे तैयार नहीं रहते, किसी का मान सम्मान नहीं करेंगे, क्यों करेंगे, हम ही तो मान सम्मान के योग्य है, दूसरे का क्यों करेंगे, मान सम्मान की योग्यता नहीं रहती है, हमेशा चिंता में रहते हैं, चाहे कुछ कितना भी ऐश्वर्य होने दीजिए नित्य चिंता ग्रस्त रहते हैं। वैर भाव बहुत ज्यादा रहता है अंदर, वैर किसी से भी बैर, किसी कोई कारण नहीं है तो भी आपका टी शर्ट बहुत अच्छा है, मेरे पास नहीं आपसे बैर किसी भी कारण से बैर, बैर भाव बहुत रहता है। दूसरों का धन हड़पने की नित्य कोशिश रहती है, प्रयास रहता है कि दूसरों का धन बिना कुछ किए कैसे हड़पा जाए, इसका नित्य उनका प्रयास, इसके लिए प्रयासरत रहते हैं, निर्लज्जता रहती है बहुत ज्यादा, कुटिलता रहती है, निर्लज्जता रहती है, भेद बुद्धि रहती है। भेद बुद्धि का वर्णन पिछले श्लोक में हुआ है, आपको स्मरण आया भेद बुद्धि अर्थात क्या, क्या है भेद बुद्धि का अर्थ? अलग देखना, अपने जैसा नहीं समझना, भेद करना, भेद बुद्धि। पिछले श्लोक में बहुत विस्तृत हुआ है उसका अर्थ, भेद बुद्धि का। कठोरता, बड़े कठोर, बड़े कठोर। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर भरपूर मात्रा में रहता है, बहुत बोलने का स्वभाव रहता है राजसिक व्यक्ति, तो बहुत बोलता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, राजसिक स्वभाव राजसिक प्रवृत्ति, पटर पटर शुरू रहता है, नहीं सुनने की इच्छा बहुत कम होती है, बोलने का प्रयास तत्परता बहुत ज्यादा होती है, ये राजसिक व्यक्ति। तमोगुणी क्या होते हैं? ये तो बहुत ही गए भी, इनको हमेशा अज्ञान में रहते हैं, ज्ञान के लिए जरा भी प्रयास नहीं होता है, नित्य अज्ञान में रहते हैं, क्रोध रहता है, बहुत ही अशुद्ध रहते हैं, बड़े गंदे रहते हैं, पहले में शौच था, पवित्र रहते हैं। ये जो तामसिक लोग होते हैं बड़े गंदे, सब उनका दुर्गंध आता है शरीर का, वस्त्रों का, इस प्रकार से रहते हैं दुर्गंधी। विहार भी करते हैं, विहार तो अनुचित विहार करते हैं, आहार भी करते हैं तो अनुचित आहार करते हैं, आहार और विहार अनुचित, जो खाना नहीं चाहिए वही खाएंगे, जहां जाना नहीं चाहिए वही जाएंगे, जब ऐसे समय जिस समय नहीं जाना चाहिए उसी समय जाएंगे, तो अनुचित आहार और अनुचित विहार, और अज्ञानता भरे नाच गानों में बड़ा ध्यान रखते हैं, मतलब उसमें उनको प्रीति हो जाती है, अज्ञानता भरे जैसे गीत होते हैं, नाच गाने बाजे, तो इसमें पूरा अज्ञान भरा हुआ है, उसमें बड़ी उसके प्रति आकर्षित रहते हैं, ये भी बहुत बड़ा अज्ञान है। और अनेक प्रकार के धर्मों से द्वेष करते हैं, कोई भी धर्म हो, किसी का भी कोई भी, अनेकों धर्मों से द्वेष का भाव रहता है। ये हो गए तामसिक। नाउ चॉइस इज योर्स, सात्विक, राजसिक, तामसिक, ये रजोगुण तीन रस्ते हैं, ये तीनों रसों का स्वभाव यह है, और ये तीनों एट ए टाइम प्रेजेंट रहते हैं, एक ही समय में उपस्थित रहते हैं, सभी के लिए उपस्थित है, सभी की बहुत अच्छी तरह से सेवा करते हैं, किसी को भी नहीं छोड़ते। हाँ, ये तीन रस्ते हैं। 84 लक्ष योनि जो है कैसे बनती है, 84 लक्ष योनि ये तीनों गुणों से, 84 लक्ष योनियों को बनाने में कौन जिम्मेदार व्यक्ति है? तीन बड़े जिम्मेदार व्यक्ति है, 84 लक्ष योनियां ये बना देते हैं, ये मूल तीन है लेकिन बनाते 84 लक्ष, कॉम्बिनेशन, जिसे तीन रंग होते हैं, तीन कलर, लाल नीला और पीला, लाल नीला पीला, इनको आप मिक्स कीजिए, हजारों प्रकार के कलर तैयार हो जाएंगे, कितने तो भी कलर तैयार हो जाते हैं, जैसे पीला और नीला एकत्रित किया तो कौन सा बनेगा? हरा बन जाता है ना, पीला और नीला एकत्रित किया तो हरा बन जाता है, फिर लाल, ऐसे अनेक बन जाते हैं, ऐसे ये तीनों का, मान लो थोड़ा रजस ज्यादा सत्व तो कुछ नया आइटम बन जाएगा, कुछ थोड़ा सत्व और बड़ा तमा तो कुछ नया आइटम बन, ऐसे अनेक आइटम्स बन जाएंगे, सभी का भयंकर भयंकर गुणधर्म रहेंगे सभी के तो बेसिक तीन कलर है। अभी ये जो है, ये शरीर, ये आइटम जो है, इसमें कौन सा कलर ज्यादा है, सत्व है कि तमस है कि रजस है, ये देखना चाहिए। हम लोग प्रत्येक व्यक्ति यहाँ जो बैठे हैं, हमारे अंदर कौन सा रंग है, सबसे ज्यादा रंग कौन सा है और प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विभिन्न प्रकार से ये प्रपोर्शन रहता है, प्रमाण रहता है, विभिन्न प्रकार का होता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है, प्रत्येक व्यक्ति भिन्न कर्म करता है, प्रत्येक व्यक्ति की भिन्न कर्मों में रुचि है, यह मूल कारण है, क्योंकि किसमें लाल रंग ज्यादा है तो किसमें काला रंग ज्यादा है तो किसमें ऐसे रंग बड़े ज्यादा कम ज्यादा है। सत्व रज तम का जो प्रमाण है वो कम ज्यादा में है, हमको यह समझना चाहिए कि हमको इस प्रकार से जो कर्म करवाते हैं, हम जिस प्रकार से कर्म करते हैं गुणों के प्रभाव से करते हैं, तो मैं अपने आप को कर्ता क्यों मानता हूं, मेरे अंदर की वासनाएं मुझे पहले विचार उत्पन्न करती है, विचार फिर शरीर में आता है, फिर शरीर कर्म करता है। और विचार क्यों आता है, विचार क्यों आता है मन में? गुणों के कारण। जिस गुण का संस्कार ज्यादा होगा वैसे ही तो विचार आएगा। आप बाहर जाके कितना भी सर पटक पटक के लोगों बोलो भगवत गीता का क्लास अंदर चला, उधर बाजू में उधर क्लब है, वो क्या है दुकान है उधर कॉर्नर पे, उधर कम से कम 150-200 लोग खड़े रहते हैं। आप उनको कितना भी बोलिए यहाँ आइए, वो नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि गुण का प्रभाव जिसके ऊपर जितना है उसके अनुसार वो कर्म करता है। गुणों के कर्म, गुणों के अनुसार वो स्वयं कर्म नहीं कर रहा है, उसके ऊपर जो प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि, गुण कर्म कर रहे, गुण कर्म करवा रहे हैं और उसके कारण विचार उत्पन्न हो रहे हैं। उसी प्रकार से विचार उत्पन्न होते हैं और वो जब विचार उत्पन्न हो जाते तो मेरे पैर उसी दिशा में जाते हैं। तो मैं कैसे कह सकता हूं कि कर्ता मैं हूं, यह एकदम विपरीत बात है। जैसे उदाहरण प्रभुपाद जी कई बार ये उदाहरण दिए, कठपुतली का उदाहरण, इतनी सुंदर डांस करती है कठपुतली, बहुत अच्छा नृत्य करती है, लेकिन कौन करवाता है उससे नृत्य? उसके धागे बांधे हुए रहते हैं बराबर से, और वो बराबर एक धागा खींचते एक धागा छोड़ते तो बराबर नृत्य करती है कठपुतली, है ना? लगता है कि ये कठपुतली डांस कर रही है, परंतु वो डांस वो नृत्य नहीं कर रही है, उससे करवाया जा रहा है। कोई धागे है, कोई गुण है, वो धागे उसको नचा रहे। उसी प्रकार से मनुष्य का है, ये गुणों के प्रभाव के कारण वो नाचते रहता है कठपुतली के जैसा, विभिन्न प्रकार का नृत्य करता है, कभी सात्विक नृत्य करता है तो कभी तामसिक नृत्य करता है। ये गुण करवाते हैं सारे नृत्य। अब ये गुण कैसे करवाते हैं, तो पिछले समय पिछले जन्म में जो गुणों के प्रभाव में मैं था, पता नहीं कौन से गुणों के प्रभाव में था, कौन से गुण का संग, कौन से गुण का संग ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हुआ, उस संग के कारण इस जन्म में उसी प्रकार की इच्छा लेके जन्म लिया। कुछ समय तक वो इच्छाएं सुप्त रही अज्ञानता के कारण, उम्र कम थी, आयु कम था, तो सुप्त रूप में वो इच्छाएं रही, परंतु जैसे जैसे विषय मिलते गए वैसे वैसे पुराने जन्म की इच्छाएं पूरी करने की लोलुपता बढ़ गई। पिछले जन्म का जो भी अपूर्ण रह गया वो अभी पूर्ण करने की लोलुपता क्यों बढ़ गई? क्योंकि उस प्रकार के विषय मुझे दृष्टिपथ में आ रहे हैं, तो इसलिए उस प्रकार के कर्म कर रहा है कि नहीं? लिंक बराबर है ना? इसलिए पिछले जीवन की इच्छाओं के अनुसार ये शरीर प्राप्त होता है और उसी के अनुसार वो कर्म करता है। जिसने जिस गुण का अधिक मात्रा में संग किया उसके अनुसार उसे अभी शरीर प्राप्त होता है। संग का ही प्रभाव होता है। दूसरा पंगा, ऐसा संग यदि हो जाए जिसको यदि टाल ही नहीं सकते, लेकिन वो संग ठीक नहीं है और उसको टाल ही नहीं सकते, तो ये अपना प्रारब्ध ही है, दूसरा क्या हो सकता है? पिछले जन्म में ऐसे कुछ कर्म किए कि ये हमारे नसीब में था? हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। यह बात निश्चित समझना चाहिए, आज हमको जो कुछ भी मिल रहा है वो हमने पहले उसको बोया है। बिना बोए हुए कुछ नहीं उगता है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक विषय, प्रत्येक घटना, प्रत्येक व्यक्ति आज हमको जो मिल रहे हैं उसका कारण ये गुणों के प्रभाव के अनुसार हमने जो कुछ पिछले जन्म में या पिछले समय में किया है उसका यह फल है। नॉट नेसेसरी पिछले जन्म में, कुछ वर्ष पहले भी किया हो सकता है, कभी भी किया हो सकता है पास्ट में, उसी का यह फल हमको प्राप्त हुआ। हम ही ने बोया है, परंतु कैसे बोया है? गुणों के प्रभाव में, गुणों के प्रभाव में आकर, गुणों के प्रभाव से, गुणों के संग के कारण, गुणों के साथ जो संग हुआ संग के कारण हमारी वैसी प्रवृत्ति हुई है और हमने उस प्रकार का आचरण किया। आने वाले जन्म में क्या होगा, आने वाले जन्म में क्या होगा, कैसे होगा, ये भगवान आगे कहेंगे। पीछे के जन्म में हमने जो कुछ भी किया है उसका फाइनल प्रोडक्ट यही है जो आज हम हैं। क्या बोले, प्रश्न नहीं समझा? हो सकते हैं। जब पिछले जन्म में मनुष्य थे इसीलिए तो फिर मनुष्य बने, मनुष्य थे इसीलिए तो मनुष्य बने। मनुष्यों ने सर्वश्रेष्ठ मांगा जाता है, मनुष्य योनि सर। देखो लॉजिकली तर्क कीजिए थोड़ा सा तर्क। सबसे श्रेष्ठ योनि कौन सी है? मनुष्य। सबसे श्रेष्ठ योनि यदि मनुष्य और हमको यदि मनुष्य योनि मिल गई है तो पिछले जन्म में हम कभी तो भी अच्छे मनुष्य होंगे, उसमें भी भक्ति मिल रही है, अर्थात पिछले समय कभी तो भी हम मनुष्य रहे हैं, उस समय हमने कुछ अच्छा अकाउंट जमा करके रखा है, तब जाके कृष्ण भक्ति के में रुचि उत्पन्न होगी। ये बात तो निश्चित है ना।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।
देखो जीवात्मा, जीवात्मा स्वतंत्र है, पर जीवात्मा की स्वतंत्रता केवल इतनी है कि वो चॉइस कर सकता है, वो निर्णय ले सकता है कि कौन से गुण का मैं संग करूं। दैट्स इट, इतनी स्वतंत्रता है। बहुत बड़ा कुछ स्वतंत्रता समझने की आवश्यकता नहीं है। तीन रस्ते है, तीन रस्तों में से कौन से रस्ते से आपको बांधा जाए ये चॉइस करने का अधिकार और स्वतंत्रता आपको है, उसी को स्वतंत्रता कहा गया है कि नहीं आप बताइए। तीन गुणों के अलावा आपके पास कुछ है नहीं, हमारे पास कुछ है नहीं, तीनों गुणों के प्रभाव में ही हम रहते हैं, हम स्वतंत्र है। केवल इन तीनों गुणों में से कौन सा गुण आपको चाहिए, कौन से रस्ते से बांध जाना चाहते हो, बंधना चाहते हो, वो स्वतंत्रता हमारे पास। सत्व गुण के रस्ते से बंधना चाहते हो, रस्ते तो तीनों हैं, तीनों बांध देते हैं। किससे बांधे जाना है वो हम डिसाइड कर सकते हैं, उतनी हमको स्वतंत्रता है। बाद में एक बार निर्णय ले लिया, संग कर लिया, उसके पश्चात आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लो रूपा जी उदाहरण लेते हैं, वायुयान अर्थात विमान, विमान में बैठ गए हैं, ऊपर चढ़ गए, टेक ऑफ हो गया है, एकदम 10,000 फुट ऊपर विमान है, और अभी आप बोल रहे कि अभी मुझे ये नहीं चाहिए से उतरना है। जैसे माता जी ने प्रश्न पूछा, अभी हमको ऐसा संग मिल रहा है समझो, तो फिर अब क्या करें? अब विमान उड़ गए, मिड एयर बीच में है, बीचों बीच में अंतरिक्ष में 10,000 फुट ऊपर है, नहीं उतर सकते आप। आपने ही चॉइस किया है वो विमान, आप ही ने फ्लाइट का टिकट निकाला, आप ही ने वीजा निकाला, आप ही ने सब कुछ निकाला, उसमें बोर्ड भी आप हो गए, आधे अधूरे वो आधे ऊपर तक चला गया, और अब आप बोले कि ये विमान नहीं चाहिए, नहीं हो सकता। हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या करना होगा? टेक ऑफ के पहले सोचना होगा। विमान उड़ने के लिए सज्ज हो जाता है, टेक ऑफ लेता है, उसके पहले सोचना होगा एयर इंडिया से जाना है कि लुफ्थांसा से जाना है कि ब्रिटिश एयरवेज से जाना है, कौन सा फ्लाइट मुझे चाहिए, कौन सा शरीर मुझे चाहिए। अभी फ्लाइट आने को सबको देरी है, अपनी फ्लाइट आने को सबको देरी है, हमको डिसाइड करना है। फ्लाइट अर्थात शरीर, विमान अर्थात शरीर, कौन से विमान में अर्थात कौन से शरीर में बैठ के विहार करना चाहते हैं, प्रवास करना चाहते हैं जीवन का। वो शरीर वो विमान जब तक टेक ऑफ नहीं होता है, जब तक वीजा क्लियर नहीं होता है, उसके पहले डिसाइड करो। अर्थात ये मनुष्य जीवन है, यदि हमारे पास समय भी है भगवान की कृपा से, पता नहीं पर अभी तो है, किसी का कुछ भरोसा नहीं पर अभी तो है, तो अभी डिसाइड करो। दिस इज अ टाइम टू डिसाइड, ये क्षण है निर्णय लेने का, मनुष्य जीवन है निर्णय लेने के लिए, कौन सी दिशा में मैं जाऊं, कौन सा शरीर लेके मैं उड़ू, नहीं है कि नहीं? किया जा सकता है, वही तो बता रहे भगवान, वही बता रहे हैं भगवान। कितनी बातें बताए पिछले 5-6 शुक्रवार से, कई बातें बताए क्या करना चाहिए, भगवान के अनुसार कर्म करना चाहिए, उपदेशों के अनुसार कर्म करना चाहिए, भगवान ने जो बताया वैसे ही करना चाहिए, परम बहुत सारे कारण, बहुत सारी बातें, वही तो चर्चा हो रही है क्या करना चाहिए उसके लिए, ये किस लिए भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, यशस्वी होने के लिए, की फॉर सक्सेस, यश की किल्ली चाबी, वही तो भगवान बता रहे हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
व्यक्ति कैसे कर्म कैसे करता है, तीनों गुणों का प्रभावित व्यक्ति, तीनों प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं कैसे कर्म करते हैं, मतलब उदाहरण के तौर पे मान लो कंपाउंड के बाहर, जस्ट कंपाउंड वॉल के गेट पे 1000 रुपए का नोट पड़ा हुआ, 1000 रुपीज का नोट वहां पे पड़ा हुआ। अब तीनों व्यक्ति वहां जा रहे हैं, सात्विक व्यक्ति, राजसिक व्यक्ति, तामसिक व्यक्ति। चलो सात्विक व्यक्ति गया, उसने 1000 रुपए का नोट देखा, वो क्या करेगा, वो नोट को देख के क्या विचार करेगा, किसका है, मान लो दिखाई नहीं कोई तो फिर क्या करेगा, अब किसका है भाई, किसी का गिर गया और उसको चला गया कलकत्ता, अभी भगवान के मंदिर में जाए और गरीब को खिला देगा, और वो भी दूसरे के दुख का एहसास होगा उसको। और देखिए अभी मैंने जो सात्विक गुण बताया उसकी सारी क्वालिटीज इसमें होनी चाहिए, दया करुणा सब, धर्म शुद्धता पवित्रता सब। वो सोचेगा कि लॉजिक करेगा कि यहाँ से कौन गया, हाँ वो गया है, हम चलो उसके पास जाकर। अभी अभी भगवत गीता का क्लास छूटा है, सब डिवोटी लोग हैं, दूसरे दिन आके सबको पूछते हैं इसमें से किसी का होगा है ना, और क्या कर सकता है, उठाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं कहे उठाएगा ही नहीं, ऐसा नहीं, उसको मन में आएगा विचार नहीं, पर वो कोई चोर भी ले जा सकता है, इसलिए वो सोचेगा कुछ तो करना पड़ेगा उसको। ऐसा कोई करता नहीं है, ओनर वापिस आएगा ऐसा कोई सोचता नहीं, रात को 10 बजे कहाँ ओनर आएगा, नहीं मान लो अभी क्लास छूटा अपन जा रहे हैं कंपाउंड की बात है, तो कोई भी ज्यादा देर तक वेट नहीं करेगा, सोचेगा ये
वेट मोस्ट ऑफ ऑल ले लेगा और बाद में सेवा में लगेगा।
हाँ वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, एक और एक पॉइंट सत्य, उसमें एक लक्षण है उसका सत्य, वो क्या करेगा, ये उठाएगा और किसी और एक व्यक्ति को बताएगा कौन है वहां पे आसपास में सिक्योरिटी वाला है, तो उसको बताएगा कि देख भाई मुझे ये मिला है कल तक ये मेरे पास है, कोई आया कल तक तो मुझे बताओ मेरे पास है। सत्य ये भी एक गुण है उसमें का। है ना? वो बात अलग हो गई, वो थोड़ा बुद्धि अप्लाई करना पड़ेगा ना, थोड़ा बुद्धि अप्लाई करना पड़ेगा सिक्योरिटी वाले को, कोई जो जो सात्विक व्यक्ति होता है वो बुद्धिमान होता है, वो सिक्योरिटी वाले को बोले ये नहीं बोलेगा कि मुझे 1000 रुपया मिल गया, वो पहले उसको पूछेगा कि तुम्हारा कुछ गड़बड़ हो गया क्या, पहला ही पूछेगा ये सात्विक व्यक्ति करेगा। अब राजसिक व्यक्ति मान लो वो 1000 रुपया पड़ा है, राजसिक व्यक्ति गया, वो क्या करेगा उठाएगा और क्या करेगा, अच्छा वो जेब में डाल के उसका करेगा क्या, पार्टी करेगा क्या, और करेगा मिसयूज करेगा, अब्यूज करेगा, क्योंकि राजसिक लोग मिसयूज एंड अब्यूज जानते हैं करना, मिसयूज जानते हैं राजसिक लोग और अब्यूज जानते हैं तामसिक लोग, जो भी कुछ मिला है उसका मिसयूज करेगा, मिसयूज अर्थात क्या करेगा, अनेक प्रकार के व्यसन हो गए तो उसमें वो खर्चा करेगा, जैसा हमने कहा है विभिन्न प्रकार के नाच गाने, अज्ञानता बढ़ाने वाले सब निरर्थक बातें, उसमें वो पूरा 1000 रुपया खर्चा कर देगा, है ना, और उससे होगा क्या, अज्ञान और बढ़ेगा, कम नहीं होगा और बढ़ जाएगा। तीसरा तामसिक व्यक्ति, वो क्या करेगा, उसको मिल गया 1000 रुपया, दारू पी के आहार विहार चारों प्रकार के पाप करेगा। चारों प्रकार के जो मुख्य पाप है वो कैसे चारों प्रकार के पाप करेगा, ये तामसिक व्यक्ति के लक्षण है। तो वो संत के लक्षण है। जैसे सिकंदर एक सन्यासी को मिले, एक साधु संत को मिले, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, राजा है कि क्या है, सम्राट है, वो होगा उसके घर का, मुझे क्या करना है, तू भी चोर है, तू भी तो प्रकृति कोई नहीं। वो मैं केवल आपको उदाहरण इसलिए दिया कि तीन प्रवृत्ति को समझने का आसान तरीका, इसलिए वो मैं एग्जाम्पल दिया हूँ। बाकी यहाँ पे संतों की ये विषय यही इस श्लोक में नहीं है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं तीन गुणों के प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की चर्चा हो रही है। संतों के लक्षणों की पहले चर्चा हो चुकी है।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
एक ही घर में रहते हुए तीन विभिन्न प्रकार के लोग हो सकते हैं, दो जुड़वा भाई भिन्न हो सकते हैं, एक ही घर में होते हुए तीन भाई भिन्न हो सकते हैं, जैसे विभीषण रावण और कुंभकर्ण तीन सगे भाई है। सत्व रज और तम का मूर्तिमान एग्जाम्पल। विभीषण सत्वगुणी है, रावण रजोगुणी है, कुंभकर्ण तमोगुणी है। एक ही घर में होते हुए तीनों भाइयों में इतने प्रचंड विभिन्न भयंकर क्या कहते हैं विरोधाभास, तो ऐसा कदापि भी नहीं समझना चाहिए कि हम तो बहुत अच्छे हैं इसलिए हमको कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हमारे संपर्क में जो लोग हैं, हमारे जो भाई बहन हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो अपने आप सात्विक बन जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम।